आशिका अभिमान के साथ अभिमन्यु के ऑर्गेनाइज किए हुए ब्लड डोनेशन कैंप में जा रही थी। अभिमान निशा से बात नहीं कर रहा था, तो निशा उसके कमरे के आगे उसका इंतजार कर रही थी। अभिमान ने फिर से निशा को अनदेखा किया और आशिका के साथ जाने लगा। बाहर जाते वक्त आशिका ने नोटिस किया कि पिछले कुछ समय से आकाश दिखाई नहीं दे रहा था। देखा जाए तो आकाश का उसके आसपास ना होना अच्छा था, लेकिन उसका इस तरह गायब होना भी किसी तरह का अच्छा संकेत नहीं था। अभिमान से शादी करने के बावजूद आकाश उसके पीछे पड़ा हुआ था, फिर अचानक वो गायब था तो ज़रूर कोई नई साजिश करने की तैयारी कर रहा था। अभिमान ने आशिका को इधर उधर देखते हुए नोटिस कर लिया था। उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। अभिमान ने सिर हिलाया और कहा, अगर मिस्टर राजवंश को ढूंढ रही हो तो बता देता हूँ कि वो हमारी शादी के अगले दिन से ही गायब हैं। क्या उन्हें समझ आ गया कि अब मैं उनके बेटे की वाइफ हूँ तो वो मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते हैं? आशिका ने जल्दी से पूछा। ये तो इम्पॉसिबल है, वो इंसान रिश्तों में नहीं मानता है। अगर मानता तो मेरी माँ को छोड़कर ही नहीं जाता। खैर, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। वो आसपास नहीं है, तब तक तुम भी बिना किसी स्ट्रेस के रह सकती हो, अभिमान ने जवाब दिया। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उन्होंने गोवा के लिए फ्लाइट ली और 11 के करीब वे दोनों अभिमन्यु के ऑर्गेनाइज किए हुए कैंप में पहुंच चुके थे। काफी सारे लोग उस कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे और अभिमन्यु ने इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो बहुत सारे बिजनेसमैन और जाने माने लोग भी उसमें शामिल थे। अभिमन्यु और ऐशिका वे वहाँ वॉलंटियर कर रहे थे। जैसे ही अभिमन्यु की नज़र अभिमान और आशिका पर गई, वो सब कुछ छोड़कर उनके पास जाने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों आओगे, अभिमन्यु ने उन्हें देखते ही कहा। उसका इशारा खास आशिका की तरफ था। मेरे पास टाइम नहीं भी होता है तो मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है, अभिमान ने इधर उधर देखते हुए कहा। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और आगे बोला, आप दोनों बात कीजिए, मैं ऐशिका से मिलकर आता हूँ। उन दोनों को अकेला छोड़कर अभिमान ऐशिका के पास चला गया था। तो वहीं अभिमान के जाते ही आशिका को अभिमन्यु से खुलकर बात करने का मौका मिल गया था। आशिका ने एक नज़र इधर उधर दौड़ाई और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर राजवंश, एक छोटा सा काम निकलवाने के लिए आपने सच में काफ़ी खर्चा किया है। तो तुम्हें समझ आ ही गया, अभिमन्यु ने अपनी इस ना दिखने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। बिल्कुल समझ आ गया था, मिस्टर चौहान काफ़ी बिजी इंसान है, आपकी हर एक चीज़ हैंडल करते हैं, फिर भी एक छोटे से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अभिमान को इन्वाइट करने के लिए मुंबई क्यों आएंगे? मतलब आप मानने वाले नहीं हैं, आशिका ने कहा। पृथ्वी के वहां आने के साथ ही आशिका अभिमन्यु के इरादों को समझ गई थी। अभिमन्यु ने गहली सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया था। वो बोला, अब जब सब तुम्हें पता है तो बात को घुमाने फिराने का मतलब नहीं है, तुम ऐसे ब्लड देने से मना कैसे कर सकती हो? मिस्टर आशुतोष सिंघानिया, जिनसे मुझे इस बारे में बात करने पर थोड़ा सोचना चाहिए था, उन्होंने भी बिना ज्यादा सवाल जवाब किए अपना ब्लड दे दिया था, और तुम सब कुछ जानते हुए भी मना कर रही हो। मुझे सच में इंजेक्शन से डर लगता है मिस्टर राजवंश, आशिका ने मुंह बनाकर कहा। तो इसका मतलब तुम टेस्ट नहीं करवाना चाहती हो? अभिमन्यु ने आंखें छोटी करके पूछा, जिस पर आशिका ने बिना सोचे समझे कंधे उचका दिए थे। इससे पहले कि अभिमन्यु उसे मनाने के लिए कुछ कह पाता, आशिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं ब्लड डोनेट ना कर पाऊं, लेकिन डोंट वरी मिस्टर राजवंश, मैं वॉलंटियर करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आशिका अभिमन्यु को छोड़कर ऐशिका के पास जाने लगी। वहीं अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसे पहले ही लगा था कि आशुतोष सिंघानिया को ब्लड सैंपल लेने के लिए मनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा आशिका ही नखरे दिखा रही थी। अभिमन्यु ने भी ठान लिया था कि आज वो कुछ भी करके आशिका से उसका सैंपल लेकर रहे था। ऐशिका से थोड़ी बहुत बात करके अभिमान दूसरी तरफ चला गया था। जब आशिका ऐशिका के पास पहुंची तो ऐशिका ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, क्या खिचड़ी पक रही है मिस्टर राजवंश के साथ तुम्हारी? मेरा हस्बैंड परेशान दिख रहा था और तुम मुस्कुरा रही थी। आशिका ऐशिका से अलग हुई और बोली, आपका हस्बैंड बिल्कुल आपकी तरह है, खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। अगर वो तुम्हारी परवाह कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली समझा है और मुझे अभिमन्यु पर प्राउड है कि वो मुझसे जुड़े हरेक रिश्ते को उतना ही अपना मानता है और डेडिकेटेड रहता है, फिर चाहे वो माँ बाप की बात हो या फिर तुम्हारी। रूही को भी वो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, ऐशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखा। आशिका भी अभिमन्यु की तरफ ही देख रही थी। ऐशिका ने बातचीत के रुख को बदलते हुए आशिका को परेशान करते हुए हल्के लहजे में कहा, वैसे मेरा छोड़ो और अपने हस्बैंड का बताओ, उसका मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों रहता है? क्या वो पहले से ऐसा था कि शादी करने के बाद ये खास बदलाव हुआ है उसमें? पता नहीं, पर उसकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव और अच्छी नहीं है। कभी कभी मुझे उसके लिए बुरा लगता है, उसे देखकर एहसास होता है कि वो हर रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है, पर सामने वाला किसी न किसी तरीके से उसका दिल दुखा ही देता है, आशिका ने हल्की मायूसी से कहा। वो निशा के बारे में बात कर रही थी,
इशिका ने उसके हाथ को सहलाया और उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाकी रिश्ते अगर उसका दिल दुखाते हैं तो तुम उसके दर्द पर मरहम का काम करो और उसे संभालो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसका दिल नहीं दुखाओगी। इसी बात का मुझे डर लगता है कि मैं उसे हर्ट ना कर दूं। बस यही वजह है कि मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पाती, आशिका ने बताया। तुम नहीं करोगी, खुद पर यकीन रखो, इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इशिका और आशिका भी वहाँ हेल्प करने में लग गई थी। इशिका प्रेग्नेंट थी, इस वजह से ब्लड डोनेट नहीं कर सकती थी, जबकि आशिका को अभिमन्यु पर शक था कि अगर उसने अपना खून दान किया तो शायद अभिमन्यु उसका फायदा उठाकर उसका डीएनए टेस्ट ना करवा ले। बीच में ब्रेक टाइम होने पर अभिमन्यु और आशिका फिर से साथ में एक कमरे के अंदर थे। अभिमन्यु अभी भी आशिका से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मिस्टर सिंघानिया के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। मुझे समझ नहीं आता मिस्टर राजवंश, आखिर आप इसके इतना पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैंने मिस्टर चौहान से पता किया था, आज का आपका शेड्यूल काफी टाइट था, फिर भी आपने ये सब ऑर्गेनाइज करने में अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर दिए। प्लीज मेरे लिए ये सब मत कीजिए, मुझे बुरा लगता है, आशिका ने हल्का चिढ़कर कहा। मैं इसीलिए पीछे पड़ा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में तकलीफ दिखाई देती है। अब तक तुमने भी मिस्टर और मिसेस सिंघानिया का अलग चेहरा देखा है, क्योंकि वे तुम्हें तृप्ति की बेटी समझते हैं, तब तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा, वे अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। मैंने इशिका की जिंदगी को करीब से देखा है, जब मालविका उसे हर तरीके से तकलीफ देने की कोशिश करती थी, वो उसकी माँ नहीं थी तभी वो ऐसा कर रही थी, और तुम भी ये सब बेवजह भुगत रही हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि इशिका की तरह तुम्हारी लाइफ में भी खुशियाँ आए, अभिमन्यु ने उसे ऐसा करने का कारण बता दिया था। आशिका कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी, उसके चेहरे के भाव नर्म पड़ने लगे थे, तो अभिमन्यु को यही लगा कि शायद अब आशिका हाँ कह देगी। काफी देर चुप रहने के बाद आशिका ने नम आंखों के साथ भारी आवाज में कहा, सॉरी मिस्टर राजवंश, मुझे नहीं करवाना।
अभिमन्यु को मना करके आशिका वहां से जाने लगी कि अभिमन्यु जल्दी से उसके सामने आ गया था। उसने आशिका की आंखों में देखा और इस बार सख्त लहजे में कहा, तुम खुद सच जानती हो, तुम डर रही हो ना सामना करने से। आशिका, तुम लेंसेज पहन कर रखती हो क्योंकि तुम्हारी आंखें उनकी तरह हैं और वे तुम्हें पहचान ना ले। शायद तुम्हारी आंखें देखने के बाद उन्हें किसी डीएनए टेस्ट की भी जरूरत ना पड़े। आशिका की नजरें नीची हो गई थीं। आशिका को कहीं ना कहीं सच का पहले से अंदाजा था और वो बस इसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु ने उसके इस डर को पकड़ लिया था। जब पहले से सारा सच जानती हो और कहीं ना कहीं तुम श्योर भी हो, तो फिर क्यों टेस्ट नहीं करवा रही हो? अभिमन्यु ने हल्के हैरानी भरे लहजे में पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें सच पता चले। उनके लिए आशी उनकी बेटी है और मेरे लिए तृप्ति मेरी माँ। हमने इस सच के साथ अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिता दिया है, तो आगे भी बिता देंगे। अगर वे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते और मुझे तृप्ति की वजह से बुरा ट्रीट नहीं करते, मुझे ना जाने उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आपको तो पता तक नहीं है, तो एक बार फिर भी मैं ये सोचती कि शायद वे मेरे माँ बाप होते तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। कुछ चीज़ों को कभी नहीं बदला जा सकता है मिस्टर राजवंश, उम्मीद है कि आप भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, आशिका ने खुद को मजबूत करके सख्त आवाज में जवाब दिया। आशिका आज भी उन शब्दों को भूली नहीं थी जब आशुतोष सिन्हानिया ने उसे गंदा खून कहकर बुलाया था और काजल ने बिना उसका नाम और उसके बारे में जाने उसे ये तक कह दिया था कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं है। आशिका के हिसाब से उसकी परवरिश तृप्ति ने नहीं, उसने खुद ने की थी और वो बहुत बेहतर तरीके से बड़ी हुई थी। जहां इशिका मन ही मन यही दुआ किया करती थी कि काश राधिका सिंघानिया उसकी माँ निकले, वहीं आशिका सच जानते हुए भी उससे भाग रही थी। अभिमन्यु ने अब उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हारी आंखों का रंग देख सकता हूँ? तुम अपने लेंसेज हटा सकती हो क्या? अभिमन्यु ने आशिका के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो उसकी बात भी मान गया था, तो आशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। उसने अपने लेंस निकाले और आंखें खोलकर अभिमन्यु की तरफ देखा, तो अभिमन्यु ने उसकी आंखों का रंग देखने के बाद अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। तुम उन्हीं की बेटी हो, फिर चाहे इस सच से कितना भी भाग लो, कब तक इन लेंसेज को लगाकर उन्हें धोखा देती रहोगी? अगर अभिमान ने तुम्हारी आंखों का कलर देखा तो वो खुद तुम्हें पहचान जाएगा। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम बचपन में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो आज भी तुम्हें मिस करता है, अभिमन्यु बोला। आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे कुछ कहने का मौका मिलता उससे पहले अभिमान वहां आ गया था और अभिमान आशिका का नाम लेते हुए अंदर की तरफ आया था। उसकी आवाज सुनकर आशिका तुरंत दूसरी तरफ पलट गई थी। क्या हुआ? अभिमान ने हैरानी से पूछा। अभिमन्यु के चेहरे के भाव भी गंभीर लग रहे थे। कुछ नहीं, बस आशिका की आंख में कुछ चला गया था और उसे अपने लेंस हटाने पड़े। तुम बाहर चलो, वो आ रही है, अभिमन्यु ने बहाना बनाते हुए कहा।
लाओ मैं चेक करता हूँ, अभिमान ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसे रोकने के लिए अभिमन्यु ने अपना हाथ सामने की तरफ कर दिया था। उसने लेंस हटा रखे हैं और वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी आईज का कलर देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला गया था। अभिमन्यु अभी भी अंदर था और अभिमान को इस वक्त बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। जब चाचू उसकी आंखों का कलर देख सकते हैं फिर मैं क्यों नहीं, वो मुझसे ज्यादा क्लोज उनके क्यों हैं, अभिमान ने मन ही मन कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था जब उसकी आवाज सुनते ही आशिका दूसरी तरफ पलट गई थी और अभिमन्यु ने उसे आशिका के पास तक नहीं जाने दिया था। वहीं अपने लेंस वापस लगाने के बाद आशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर थैंक्स कहा। न सिर्फ उसने अभिमान को संभाला था बल्कि अब वो किसी तरह की जिद भी नहीं कर रहा था। आशिका हल्का मुस्कुराते हुए कैंप से बाहर निकली तो अभिमान ने उसकी तरफ देखा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं। आशिका सामान लाने के लिए दूसरे किसी कमरे में गई थी कि अचानक वहां किसी ने आशिका का मुंह पीछे से पकड़कर दबा दिया था। आशिका खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी और ये देखना चाहती थी कि आखिर उसे इस तरह किसने पकड़ा है। आशिका कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया और अगले ही पल वो उसे बेहोश करने वाले इंसान के कंधे पर निढाल होकर पड़ी थी।